أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ہماری بحث اصول دین در تفسیر المیزان میں توحید صفاتی میں چل رہی تھی. کل توحید صفاتی کے بارے میں کچھ وضاحت آپ کی خدمت میں عرض ہو گئی تھی. کچھ مطالب چونکہ باقی رہ گئے تھے اس وجہ سے آج ہم توحید صفاتی میں ان مطالب کو کامل کرتے ہیں. توحید صفاتی میں عرض کیا تھا کہ عقیدہ رکھنا جو ضروری ہے. مثلا جب کہا جاتا ہے کہ آپ توحید صفاتی کے قائل ہیں سے اس سے کیا مراد ہے, تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ صفات عین ذات ہیں اور صفات ایک دوسرے کا بھی عین ہیں. کل کچھ مطالب آپ کی خدمت میں اس بارے میں جو ہے وہ بیان کر دیے تھے آپ کو. صفات عین ذات ہیں, اس کی وضاحت جو ہے وہ بہت تفصیل سے بیان ہو گئی تھی, اور وہاں پر یہ عرض کیا تھا کہ صفات کا عین ذات ہونے سے مراد یہ ہے کہ خارج میں فقط ایک ہی چیز ہے, وہ ہے پروردگار کی ذات. ایسا نہیں ہے کہ صفات الگ ہوں اور ذات الگ ہو اور پھر صفات آ کر ذات کے ساتھ ملحق ہوں تب خدا جو ہے وہ صاحب صفات بنے, جس طرح کہ انسان میں ہے کہ انسان کی ایک ذات ہے اور ایک علم نام کی حقیقت ہے. یہ علم جب انسان کی ذات کے ساتھ ملتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ انسان عالم ہے. حقیقت میں ایسا نہیں ہے خداوند متعال کی ذات میں, وہاں فقط ایک ہی حقیقت ہے. ہم اپنے اس محدود ذہن کے مطابق جب خدا کو سمجھنا چاہتے ہیں تو کوئی چارہ کار نہیں ہے مگر یہ کہ ہم خدا کو جو ہے وہ ٹکڑوں میں فہم کریں. ہم جہاں پر علم کے آثار دیکھتے ہیں وہاں خدا کو عالم کہتے ہیں, جہاں ہم قدرت کے آثار دیکھتے ہیں وہاں ہم خدا کو قادر کہتے ہیں, اور اسی طریقے سے باقی صفات ہیں. اس کی ایک مثال میں آئیں, آپ کو ایک بہت سادہ سی مثال دیتا ہوں تاکہ مطلب جو ہے وہ ذرا ذہن کے قریب آ جائے, اگرچہ یہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے لیکن ایک مثال دے رہا ہوں تاکہ تھوڑا بہت ذہن قریب ہو جائے ایک اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے. مثال ہوتی ہی حقیقت کے قریب کرنے کے لیے ہے, نہ یہ کہ مثال حقیقت کو سمجھا رہی ہوتی ہے, نہ, ذہن کو آمادہ کرتی ہے مثال تاکہ ایک حقیقت کو آپ سمجھ سکیں. یہ انتہائی غلط روش ہوگی کہ اگر کوئی سننے والا یہ سمجھے یا مثلا کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ مثال ہمیشہ حقیقت کے مطابق ہوتی ہے. نہ, ایسا نہیں, فقط ذہن کو آمادہ کرنا ہے, ذہن کو تیار کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ ایک بلند حقیقت کو سمجھ سکے. مثال کیا ہے؟ مثلا آپ دیکھیں محرم میں آپ نے معمولاً دیکھا ہوگا کہ بڑے شہروں کے اندر جلوس جو نکلتے ہیں وہ ایک جلوس انتہائی لمبے ہوتے ہیں, کئی کلومیٹروں پر وہ مشتمل ہوتے ہیں. اب اگر کیمرے کی آنکھ سے دیکھیں, آپ کے پاس مثلاً کیا ہو, ایک کیمرہ ہو ڈیجیٹل جو ہے مثلاً, تو آپ تصویر بنانا چاہتے ہوں پورے اس چند کلومیٹر پر پھیلے ہوئے جلوس کی, تو آپ کا کیمرہ چونکہ محدود ہے وہ پورے جلوس کی اس تصویر کو ایک ہی دفعہ میں کھینچ نہیں سکتا. تو کیا کرتا ہے فوٹوگرافر؟ فوٹوگرافر پھر اس ایک جلوس کو دکھانے کے لیے وہ پھر کیا کرتا ہے, جلوس کو مختلف ٹکڑوں میں بانٹتا ہے. پہلے وہ ایک حصے کی تصویر لیتا ہے, پھر اس کے ساتھ ملے ہوئے دوسرے حصے کی تصویر لیتا ہے, پھر اس کے ساتھ تیسرے حصہ جو ملا ہوتا ہے اس کی تصویر لیتا ہے. یہ مختلف تصویریں لیتا ہے, اس کے بعد جب تصویریں آپس میں جوڑی جاتی ہیں تو وہ ایک ہی جلوس معلوم ہوتا ہے. اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو اتنی متعدد تصویریں بنائی گئی ہیں, آیا یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں جلوس متعدد تھے, کثرت سے جلوس موجود تھے اس لیے تصویریں اتنی مختلف بنی ہیں؟ نا, हकीकत में जुलूस एक ही था। तो फिर ये तस्वीरें मुतअद्दिद क्यों बनी इस जुलूस की? इसकी वजह ये थी कि ये जुलूस जो है वो इतना लंबा था कि कैमरे की आंख पर एक ही दफा में नहीं आ रहा था, तो फोटोग्राफर ने एक ही तस्वीर को के अंदर परोने के लिए इसको पहले टुकड़ों में बांटा, फिर उसको जो है वो एक तस्वीर बना दी इसकी। मुश्किल कैमरे में थी ना कि हकीकत में, हकीकत एक ही थी खारिज में। खुदा बंदे मुताल के मौरिद में भी तरीका कोई इसी किस्म का ही मालूम होता है, अगरचे दकीक तर है इससे, बेहतर तर है इससे, लेकिन मिसाल दी है समझाने के लिए। खारिज में फकत एक हकीकत है, मुतअद्दिद नहीं है हकीकतें जिस तरह के इंसान के अंदर हैं। इंसान के अंदर आप देखें उसकी एक जात, उसकी जात एक हकीकत है, उसका इल्म एक हकीकत है, उसकी कुदरत एक हकीकत है, मुतअद्दिद है हकीकतें और एक वजूद के अंदर पाई जाती हैं। खुदा के अंदर ऐसा नहीं है कि खुदा का एक वजूद है और उसमें मुतअद्दिद हकीकतें मौजूद हैं जिस तरह इंसान में, ना, एक ही हकीकत है फकत। उस हकीकत को चूंकि वो लामुतनाही है, उसको समझने के लिए फिर हमें उसको जो है वो अलग अलग समझना पड़ता है। कभी इल्म के जरिए समझते हैं, कभी कुदरत के जरिए समझते हैं, कभी समा के जरिए समझते हैं, कभी बसीर होने के जरिए समझ रहे होते हैं, कभी उसके हई होने के जरिए समझ रहे होते हैं, कभी उसको खालिक के जरिए समझ रहे होते हैं। ये इस तरीके से हम फिर उसको मुख्तलिफ सिफात के अंदर जो है उसको समझ रहे होते हैं। बस तौहीद सिफात में हमें ये मानना पड़ेगा कि खुदा की जात और सिफात ऐन जात हैं, यानी एक ही हकीकत है खारिज में। और तौहीद सिफाती में एक और चीज जिसके मद्देनजर रखना है हमने, ऐनियत सिफात को समझने के लिए जिस नुक्ते की तरफ मजीद तवज्जो करने की जरूरत है वो ये है। एक मतलब तो आपको जिक्र कर दिया, दूसरा मतलब ये है, वो ये है कि सिफात अगर जायद बरजात हो तो उसका माना हम यूं करते हैं कि इंसान आलिम है इल्म की वजह से। क्यों? इस वजह से कि जात उसकी और थी, एक हकीकत थी, इल्म एक अलग हकीकत थी, जुदा थी जात से। और ये हकीकत इल्म जब जात के साथ आकर मिली, इस इल्म की वजह से क्या बना? इंसान आलिम बना। बस इंसान इल्म आने की वजह से आलिम बना है, कुदरत की वजह से कादिर बना है, हयात की वजह से हई बना है, यानी जिंदा हयात जिंदगी और हई जिंदा इंसान। आया खुदा बंदे मुताल के मोरिद में भी हम यही कहेंगे, खुदा आलिम है। क्या माना करेंगे? खुदा आलिम है यानी खुदा इल्म की वजह से आलिम है, खुदा कादिर है यानी खुदा कुदरत की वजह से कादिर है। आइम्मा ने सख्ती से मना किया है। अगर कोई ये कहे कि खुदा इल्म की वजह से आलिम है, खुदा कुदरत की वजह से कादिर है, सख्ती से मना किया है कि ये अकीदा रखना गोया के शिर्क है। क्या करें फिर उसका माना? उसका माना हम ये करेंगे कि खुदा इल्म है ना कि इल्म की वजह से आलिम है। चूंकि खुदा इल्म है बस आलिम है, क्योंकि खुदा खुद एक कुदरत है बस हम इसको इस वजह से कादिर कहते हैं। खुदा जो है वो बिज़ात जो है, उसकी जात ही क्या है? कुदरत है। उसकी जात ही इल्म है, उसकी जात ही हयात है, बस उसको हम हई कहते हैं। इस मतलब को मैं रिवायत के जरिए मजीद आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। आप अगर अमालिये शेख सदूक अलैहि रहमा की तरफ रुजू करें, हवाला जो मैं दे रहा हूँ अरबी में है, 407 408 नंबर सफ़े में, इसका उर्दू तर्जमा इंटरनेट पर मौजूद है, मैंने देखा था, तो वहाँ आप इसको ढूंढ सकते हैं कि इस हदीस को आप इसको पढ़ भी सकते हैं उर्दू के अंदर, लेकिन चूंकि हदीस अरबी में है इसको अरबी ही में बयान होना चाहिए। अन अबान इब्ने उस्मान अल अहमर, अबान इब्ने उस्मान अहमर कहता है, कुल तो ले सादिक जाफर इब्ने मोहम्मद अलैहिस्सलाम, मैंने इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा, अखबिरनी अनिल्लाह तआला लम यजल समीअन बसीरन अलीमन कादिरा, कि आप मुझे खबर दें खुदावंद मुताल के बारे में कि वो हमेशा से समी है, बसीर है, अलीम है और कादिर है। काला नाम, तो इमाम ने कहा हाँ खुदा इसी तरीके से है। फकुल तो लहू, तो वो अबान कहता है कि मैंने इमाम से कहा, फ़इन्ना रजुलन यन्तहिलु मवालातिकुम अहलल बैत, एक शख्स है जिसको मैं जानता हूं वो आपकी मोहब्बत का दावा भी रखता है, यकूलो वो ये अकीदा रखता है, इन्नल्लाह तबारक व तआला लम यजल समीअन बिसमअन व बसीरन बिबसरिन व अलीमन बिइल्मिन व कादिरन बिकुदरतिन। वो अकीदा ये रखता है कि खुदा समी है कान के जरिए, खुदा बसीर है बसर के जरिए, अलीम है इल्म के जरिए, कादिर है कुदरत के जरिए। वो अकीदा यूं रखता है, काला तो रावी कहता है, फ़ग़ज़िब अलैहिस्सलाम, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम जोश में आ गए, गुस्सा आ गया इमाम को, सुम्मा कालो, इमाम ने कहा, मन काला ज़ालिक वदाना बिही, जो ये अकीदा रखता है और इसी अकीदे को मानता हो, फ़हुवा मुशरिकुन, वो मुशरिक है असलन, वलैसा मिन विलायतिना अला शैइन, असलन वो हमारी विलायत नहीं रखता, वो हमारे शियों में से नहीं है, वो हमारा मुहिब नहीं है। इन्नल्लाह तबारक व तआला ज़ातुन अल्लामतुन, खुदावंद मुताल की जात आलिम है, समीअतुन बसीरतुन कादिरतुन, खुदा की जात खुद आलिम है, खुदा की जात खुद कादिर है, न कि कुदरत की वजह से कादिर बनी है, न कि इल्म की वजह से आलिम बनी है, बल्कि खुद जात आलिम है यानी इल्म है, खुद जात जो है वो कादिर है यानी कुदरत है। देखें कितना सरीह जो है वो इमाम ने जो है वो अकीदा इस तरीके से बयान किया है। एक और रिवायत आपकी खिदमत में आज करता हूँ, मुमकिन है बाज़ बंदों ने ये मतलब नया सुना हो और मतलब सही वाजे ना हो रहा उनके लिए, कि आया वाकई आयमा ने भी खुदा को इल्म कहा है, उसकी रिवायत आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। ये रिवायत जो है वो तौहीद सदूक अलैहिर्रहमा की किताब में है, पिछली रिवायत अमाली शेख सदूक में थी, ये तौहीद सदूक में है, सफा नंबर 146 में। अन हशाम इब्ने सालिम, हशाम इब्ने सालिम जो है वो उससे रिवायत है, काला दखल तो अला अबी अबी अब्दुल्ला अलैहि सलाम, मैं इमाम सादिक अलैहि सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ, फकाल अली, इमाम ने मुझे कहा, अतन अतुल्ला, क्या तुम खुदा की सिफत बयान कर सकते हो, फकुल तो नाम, मैंने कहा हाँ, काल हाते, बयान करो, इमाम ने कहा बयान करो, फकुल तो मैंने कहा, हुवस समी अल बसीर, खुदा जो है वो समी भी है बसीर भी है, ये सिफत है उस खुदा की, काल हाजी सिफतुन यश्तरकु फीहल मखलूक, ये सिफत तो तुमने ऐसी बयान की है कि जिसमें तो खुद मखलूक भी शामिल है, मखलूक भी समी होती है सुनने वाली है, खुदा मखलूक भी बसीर है यानी देखती है। कुल तो फकई फतन आतो, तो रावी कहता है, हशाम कहता है, मैंने फिर इमाम से पूछा, फिर आप कैसी सिफत बयान करेंगे, आप खुदा को कैसे बयान करेंगे उसकी सिफात को, कहते हैं, हुवा नूरुन ला जुल्मत फी वा हयातुन ला मौत फी, खुदा हयात है कि जिसमें मौत नहीं है, वा इल्मुन ला जहल फी, खुदा इल्म है उसमें जहल नहीं है, वा हक्कुन ला बातिल फी, खुदा हक है और उसमें बातिल नहीं है, फखरजतु मिन इंदही, मैं इमाम के हुजूर से उठा, व अना अअलमुन नास बित्तौहीद, मैं अअलम तरीन इंसान था उस वक्त तौहीद के बारे में कि इमाम ने जो कुलिया मुझे बता दिया, बस तौहीद तौहीद सिफाती यानी सिफात ऐन जात हैं, यानी क्या मुराद, हकीकत एक ही है, खुदा आलिम कह सकते हैं खुदा को आलिम, लेकिन खुदा के आलिम का तर्जमा क्या करेंगे, ये नहीं कहेंगे कि खुदा आलिम है इल्म की वजह से, ना, खुद इल्म है, उसकी जात आलिम है, उसकी जात इल्म है, बस सिफात जो है वो ऐन जात हैं, सिफात जो है वो जुदा नहीं है हकीकतन जात से, एक ही हकीकत है और हम जो है वो उसको अलग अलग समझ रखते हैं। तौहीद सिफाती के अंदर मैं एक और जो है वो आपकी खिदमत में मतलब जो है वो अर्ज कर, एक और रिवायत पढ़ देता हूँ ताकि मतलब मजीद जो है वो क्लियर हो जाए। मसलन आप अगर यही तौहीद सदूक अलै रहमा की किताब की तरफ रजू करें, हदीस नंबर 14 है और सफ़ा नंबर 146 है, इसमें भी जब सिफाते परवरदिगार की बात हुई तो इमाम ने इस तरीके से मतलब को बयान किया है कि रब्बुना नूरीयुज़्ज़ात हय्युज़्ज़ात आलिमुज़्ज़ात समदीयुज़्ज़ात, हमारा परवरदिगार उसकी ज़ात नूर है, उसकी ज़ात हई है, ना कि हयात की वजह से हई है, यानी जायद बर ज़ात नहीं है, उसकी ज़ात हई है, उसकी ज़ात आलिम है, यानी उसकी ज़ात में इल्म है। यानी अब ये भी अल्फाज जो है वो नहीं है उस हकीकत को बयान करने के, हमारी ज़बान महदूद, हमारा जहन महदूद, हमारी फाह महदूद, तो हम एक लामुतनाई के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन ये मआरिफ समझने हैं हमें, चूंकि आइम्मा ने रिवायात में बयान किए हैं, कुरान ने मआरिफ को बयान किए हैं, बस इसको समझने की जरूरत है। आलिमुज़्ज़ात है खुदा, ना इल्म की वजह से आलिम है, समदीयुज़्ज़ात है खुदा, बस एक मतलब था। इसी रिवायत में अब कोई बंदा ये एतराज ना करे कि खुदा को हम कल ये कोई एतराज करना शुरू ना कर दे, क्योंकि आइमा ने इल्म कहा है कि अल्लाह इल्मुन ला जहला फी, खुदा इल्म है ना कि आलिम, तो हम खुदा को आलिम ना कहें बल्कि इल्म कहें, इस किस्म का कोई झगड़ा शुरू कर दे ना। खुद 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 आइमा ने जो है वो उनको आलिम से भी याद किया। मतलब इस यही रिवायत जो मैंने आखिर में पढ़ी, इससे एक लाइन ऊपर आप जाएंगे तो यूं बयान करते हैं, वल्लाहु नूरुन ला जलाम फी वह हय्युन ला मोतला। पिछली रिवायत में क्या था, वो ये था कि हयातुन ला मौता फी, हयातुन ला मौता फी, ये मतलब जो है वो बयान कर, लेकिन यहां पे क्या ताबीर है, वहय्युन ला मौता ला। पिछली रिवायत में जो था वो क्या था, वो इल्मुन ला जहला फी, और इस रिवायत में फरमाते हैं आलिमुन ला जहला फी। बस खुदा को इल्म आलिम दोनों से ताबीर कर सकते हैं, आलिम कह सकते हैं खुदा को, लेकिन माना जब हम करेंगे खुदा आलिम है, उसका माना ये नहीं करेंगे चूंकि खुदा इल्म रखता है बस आलिम है। खुदा की जात खुद इल्म है, हकीकत इल्म है, हकीकत हयात है, खुदा जुदाई नहीं है। बस एक मतलब जो है ये रोशन हो गया और आपकी खिदमत में बयान कर दिया। एक और मतलब जिसको वजाहत करना जरूरी है वो ये, अभी तक तो जो हमने बात की थी वो क्या थी, सिफात और जात जुदा नहीं है बल्कि एक ही हकीकत का नाम है, जात और सिफात। अब ये बात आपकी खिदमत में थोड़ी वजाहत करनी है, खुद सिफात में भी जो कसरत नजर आ रही है हकीकत में कसरत नहीं है। इल्म खुदा के मोरिद में इल्म कुदरत से जुदा नहीं है, कुदरत इल्म से जुदा नहीं है, हयात कुदरत और इल्म से जुदा नहीं है, एक ही हकीकत है वहां पर। खुदा इल्म रखता है इस हैसियत से कि वो कादिर है, खुदा इल्म है इस एतबार से कि वो कादिर है, खुदा कुदरत है इस एतबार से कि वो आलिम है, वहां हैसियत मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन हमारे अंदर हैसियत मुख्तलिफ है। मैं हैसियत इल्म की वजह से आलिम हूं और हैसियत कुदरत की वजह से कादिर हूं, हैसियत मेरे अंदर मुख्तलिफ है। मेरे अंदर अगर कुदरत ना हो, इल्म हो सकता है, इल्म ना हो कुदरत हो सकती है मेरे अंदर, क्योंकि दो हकीकतें मेरे अंदर पाई जाती हैं और ये दोनों हकीकतें जुदा हैं। लेकिन खुदा के मोरिद में ऐसा नहीं है कि अगर फर्ज कर लें कुदरत ना होती तो इल्म होता ना, वह एक चीज है। उस हकीकत को हम जो हैं वो अपनी महदूद फहम के जरिए अलग अलग तसव्वुर कर रहे हैं। हमें ये एहसास हो रहा है कि खुदा के मोरिद में भी कुदरत इल्म से जुदा है, इल्म कुदरत से जुदा है, हयात इल्म कुदरत से जुदा है, ना वहां कोई जुदाई नहीं है, सब कुछ एक है। सिफात भी आपस में जुदा नहीं है, सिफात भी आपस में एक ही हैं। बहुत ही सरीह जो हैं वो रिवायतें जो हैं वो इसमें मौजूद हैं। मैं इस बारे में भी आपकी खिदमत में रिवायत अर्ज कर देता हूं ताकि मतलब वाज हो जाए। देखें कितने मआरिफ तौहीद के हमारी रिवायतों में मौजूद हैं कि मुतासिफाने अफसोस से कहने पड़ता है कि इन मतालिब को जो है वो बयान नहीं किया जाता। उसूल काफी की तरफ आप रजू करेंगे जिल्द नंबर एक सफा 108 में, अरबी का यह हवाला है ये भी, तो यूं रिवायत बयान हुई है इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम से है कि इमाम ने इस तरीके से बयान किया उसको कि खुदावंद मुताल क्या है, इन्नहु वाहिदुन समदीयुन अहदीयुल माना लैस बिमानी कसीरा मुख्तलिफा। खुदा वाहिद है, खुदा समद है, खुदा अहदीयुल माना है। अहदीयुल माना को मैं पहले वजाहत कर चुका हूं, इमाम अली अलैहिस्सलाम की एक रिवायत में भी आया था,
احدی جہاں پر بیان ہو رہی تھی، لیس بمعانی کثیرہ مختلفہ، خدا کے مورد میں معانی مختلف نہیں پائی جاتی، وہاں پر صفات الگ الگ جدا جدا نہیں ہیں، کثرت نہیں پائی جاتی وہاں پر. وعند اذ یسأله الراوی، جب یہاں پر پہنچے امام تو راوی نے سوال کیا، جعلت فداک، میں قربان جاؤں آپ پر، یزعم قوم من اہل العراق، اہل عراق میں سے ایک فرقہ ایک قوم ایسا ہے کہ جو عقیدہ رکھتا ہے کہ انہ یسمع بغیر الذی یبصر، خدا سنتا ہے اس حیثیت سے کہ جس حیثیت سے وہ دیکھتا ہے، نہ خدا یسمع وہ سنتا ہے، اس حیثیت سے نہیں سنتا جس حیثیت سے وہ دیکھتا ہے، یعنی سننے کی حیثیت اور ہے اور دیکھنے کی حیثیت اور ہے. یسمع بغیر الذی یبصر، کہ سننا اس کا اس چیز کے ذریعے نہیں ہے کہ جس چیز کے ذریعے دیکھتا ہے. حیثیت سامع، حیثیت سننا اور حیثیت دیکھنا دو جدا جدا ہیں، یوں وہ عقیدہ رکھتے ہیں. ویبصر بغیر الذی یسمع، اور دیکھنے کی حیثیت فرق کرتی ہے اس کے اندر سننے کی حیثیت سے، یہ حیثیت جدا ہیں، وہ عقیدہ یہ رکھتے ہیں. تو فقال، تو امام نے فرمایا، کذبو، جھوٹے ہیں، الحدو، ملحد ہیں، وشبہو، اور انہوں نے انسان جیسا خدا کو بنا دیا ہے. انہو سمیع بصیر، وہ سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے. یسمع بما یبصر، اس کے اندر سننے کی حیثیت وہی ہے جو حیثیت دیکھنے کی ہے، وہ حیثیت مختلف نہیں ہے. میری حیثیت فرق کرتی ہے دیکھنے کی، میں جس حیثیت سے دیکھتا ہوں اس حیثیت سے سنتا نہیں ہوں، جس حیثیت سے سنتا ہوں اس حیثیت سے دیکھتا نہیں ہوں، میرے اندر حیثیات فرق کرتی ہیں، جہات فرق کرتی ہیں، دیکھنا میرا اور چیز کے ذریعے ہے، سننا میرا اور چیز کے ذریعے ہے. خدا کے اندر یہ جہات نہیں پائی جاتی ہیں. خدا سمیع ہے اس اعتبار سے کہ وہ بصیر ہے. ویبصر بما یسمع، خدا بصیر ہے اس اعتبار سے کہ وہ سمیع ہے، اس میں جدائی نہیں پائی جاتی. بس صفات آپس میں بھی جدا نہیں ہیں، حقیقت کے اعتبار سے ایک ہی حقیقت ہے، صفات بھی ایک ہیں اور صفات اور ذات بھی ایک ہے، جدائی ان کے اندر نہیں ہے، عینیت ذات کے ہم قائل ہیں. بس توحید صفاتی کیا مراد، یعنی خدا کی ذات اور صفات میں دوئیت نہیں ہے، کثرت نہیں ہے، جدائی نہیں ہے، بلکہ ایک ہی حقیقت ہے. اسی طریقے سے صفات بھی ایک دوسرے کا عین ہیں، قدرت علم سے جدا نہیں ہے، علم قدرت سے جدا نہیں ہے، حیات قدرت سے جدا نہیں ہے، سمع اور بصر حیات سے جدا نہیں ہے، کچھ بھی جدا نہیں ہے، وہاں ہر چیز ایک ہے. ہم جو ہیں وہ خدا کی معرفت حاصل کرنے میں محتاج ہیں کہ ہم اس کو حیات کے ذریعے حی ہونا سمجھیں، اس کا علم کے ذریعے آثار علم کو دیکھ کر عالم ہونے کو سمجھیں، اس کو آثار خلقت کو دیکھ کر خالق ہونا سمجھیں، اس کا آثار قدرت کو دیکھ کر قادر ہونے کے قادر ہونا سے قادر ہونے کو پہچانیں اس کا، یہ ہماری ہے اور یہ رہے گا. ہم محدود ہیں چونکہ اس طریقے سے خدا کو پہچانا ہے، اور اس میں کوئی نقص بھی نہیں ہے، نقص ہماری ذات میں چونکہ ہے، لہٰذا خدا کو عالم کہہ سکتے ہیں، قادر کہہ سکتے ہیں، سب کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ وہاں پر عالم قادر سے جدا نہیں، قادر عالم سے جدا نہیں ہے، اور ذات ان سب سے جدا نہیں ہے. یہ مطلب جو ہے وہ تمام ہو گیا ہمارا. ایک عبارت جو علامہ کی بیان کرنا رہ گئی تھی، اسی مطلب کے اندر اس کو بیان کرتے ہیں اور اس توحید صفاتی کے چیپٹر کو کلوز کر دیتے ہیں. علامہ توحید صفاتی کے اندر ایک مطلب یوں بیان کرتے ہیں کہ کل میں یہاں تک بیان کر چکا تھا، وَمِنْ هُنَا قَزَيْنَا أَنَّ صِفَاتِهِ عَيْنَ ذَاتِهِ عَيْنُ ذَاتِهِ، کہ اس کی ذات، اس کی صفات جو ہیں عین ذات ہیں. وَكُلُّ صِفَتٍ عَيْنُ الصِّفَة، ہر صفت دوسری صفت کی عین ہے. إِلَّا بِحَسَبِ الْمَفْهُومِ، ہاں مفہومی اعتبار سے ایک دوسرے سے جدا ہیں. علم کا مفہوم اور معنی فرق کرتا ہے قدرت کے معنی اور مفہوم سے، لیکن مصداق کے اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے علم اور قدرت آپس میں جدا نہیں ہیں، وہ خدا میں ایک ہی ہیں. لو کان علمہ غیر قدرتہ مثلا،
अगर खुदा का इल्म उसकी कुदरत का गैर हो, इल्म जुदा हो कुदरत जुदा हो, तो क्या लाजिम आएगा? वकुल्लु मिनहुमा गैर जाते, और इल्म और कुदरत जुदा हो, जात जुदा हो, यानी वो दोनों सिफात गैर जात हो, कमा फीना माशरल इंसान, जिस तरह के हमारे अंदर इंसान के अंदर पाया जाता है, मसलन लकाना कुल्लु मिनहा यहुद्दुल आखर, तो उनमें से हर एक क्या कर रहा होगा? दूसरे को महदूद कर रहा होगा। इल्म कुदरत को महदूद कर रही होगी, कुदरत हयात को महदूद कर रही होगी, और ये सिफात मिलकर जात को महदूद कर रही होंगी, क्योंकि हम इनको अलग अलग मान रहे हैं। और जुदा होना, अलग अलग होना उस वक्त तसव्वुर किया जा सकता है कि जब ये सिफात महदूद हो, तब अलग अलग होंगे। अगर हो ये मानना मुतनाही, तो फिर जो है वो अलग अलग कैसे हो सकती हैं? ये मतलब जो है अल्लामा ने जिल्द नंबर 8 और सफा नंबर 351 में जो है वो जिक्र किया है। ये तौहीद सिफाती की बहस हमारी जो है वो तमाम हो जाती है, और इन मुमकिन है कि अक्सर दोस्तों या बाज़ दोस्तों के लिए ये मतलब समझना जो है मुश्किल हो, उन्होंने पहली दफ़ा सुना हो, तो आप इसको चंद मरतबा इस दर्स को सुनिएगा, और फिर अपने मुतालआत को मज़ीद बढ़ाइएगा, ताकि इस हकीकत को सही तरीके से दर्क कर पाएं और इस मारिफत को सही तरीके से हासिल कर सकें, क्योंकि जन्नत के अंदर कयामत के दिन दरजात की बुलंदी मारिफत पर है, और सबसे बुलंद मारिफत जो है वो तौहीद की मारिफत है। अगर तौहीद में मारिफत बुलंद होगी, तो इमामत की मारिफत भी बुलंद हो जाएगी, और जन्नत के अंदर दरजात भी बुलंद होंगे। तो दो हमने इस वक्त मरहले तौहीद के तमाम कर दिए हैं, तौहीद ज़ात और तौहीद सिफात। अब बारी आती है तौहीद अफ़ाली की, कि इंशाल्लाह बाद वाले दर्स में इसको मज़ीद जो है वो आगे बढ़ाएंगे, और मतलब को मज़ीद वजाहत से बयान किया जाएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।